तो आइए जरा अगला टॉपिक शुरू करते हैं, और वो क्या है, वुजू का तरीका। अब देखिए कि गुसल के बाद अब वुजू है, ये हमारे दीन की खूबसूरती है, इसका हुसन है कि हम एक एक चीज वही की रोशनी में करते हैं। कितनी बड़ी बात है, कोई इतना खुश नसीब है। आप किसी भी दुनिया के आज के मजहब को देख लीजिए, क्या लोग वाकई इतना एहतमाम करते हैं तहारत का जितना इस्लाम ने सिखाया आपको मुझे। तो इस पे कहिए अल्हम्दुलिल्लाह ही बिनेमतिल इस्लाम, ए अल्लाह तूने हमें इस्लाम की नेमत दी, बिनेमतित तहारा पाक साफ रहने की अल्लाह ताला आपने हमें आदत डाली। तो ये चीजें अपने बच्चों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डालने के लिए भी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब हम इन चीजों को इस रंग से दिखाएंगे उनको तो वो इंशाल्लाह इस पे खुश होंगे। तो आइए पढ़ते हैं नमाज नबी में से, टॉपिक है हमारा आज वुजू का। एक छोटी सी दुआ कह लीजिए या कुरान की वो आयत जो के वाकई में नमाजों की असल रूह याद दिलाती है, उसको भी देख लेते हैं कि इन्न सलात तनहा निल फख्शाई वल मुनकर वल जिक्रुल्लाही अकबर वल्लाहु यालमु मा तस्नाउन। और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज फुहश और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम लोग करते हो। अब देखिए कि सूरत अनकबूत की आयत 45 आपको मुझे क्या सिखा रही है कि नमाज का असर हमारी जिंदगी में झलकना चाहिए। किस सूरत में? कि हम लघवियात और फोहश चीजों से दूर हो जाएं। नमाज जिस्मानी और रूहानी तौर पे हमें पाक कर देती है, और जितना ज्यादा आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करते जाते हैं, जितना ज्यादा आपको इन चीजों से कुर्बत महसूस होती है, उतना ज्यादा आप इन चीजों के साथ अपने आप को करीब महसूस करते हैं। तो अब हम चलेंगे वुजू का तरीका और मसनून आदाब। नींद से जागकर पहले हाथ धो लीजिए। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ इस्तैयक़ज़ा अहदुकुम मिन नौमिही फलयग़सिल यदहु क़ब्ल अन युदख़िलहा फी वुदूइही। यहाँ लफ्ज़ देखिए वा है, वजू का पानी जिस तरह रखा जाता है ना उस बर्तन को कहते हैं, वाव पे पेश होगा तो वुदू एक्शन का नाम है जो हम करते हैं तहारत हासिल करने के लिए, लेकिन वाव पे जबर हो तो ये नाउन है। किस सूरत में? कि हम वजू करने के लिए जो बर्तन यूज करें वो वजू है, और वजू करना वजू है। बहरहाल क्या कहा, युदखिलहा फी वदूइही फ इन अहदकुम ला यद्री ऐ नबातत यदुहू। जब तुम में से कोई नींद से जागे तो अपना हाथ पानी के बर्तन में ना डाले जब तक इसे 3 बार धो ना ले, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि इसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी है। आप सब जानते हैं कि नींद मौत की बहन है। रात जिस्म कहीं भी जाए, खारिश करें और कहीं हाथ लग जाए, गंदगी लग जाए, तो इसलिए हाथ सुबह उठकर किसी साफ बर्तन में जहां पानी है उसमें डालने से पहले अलग से धोने चाहिए। ये बुखारी की रिवायत 162 और सही मुस्लिम 278 रिवायत है जिसको हम देख सकते हैं। मुराद क्या है इससे? मुराद ये कि नींद से जागकर हाथ पहुंचो। पहुंचे क्या होते हैं? जहां घड़ी पहनी जाती है, रिस्ट वॉच, रिस्ट को पहुंचे कहते हैं। यहां तक 3 बार धोने के बाद पानी के बर्तन में हाथ डालने चाहिए। हो सकता है रात को हाथ बदन के किसी खास हिस्से को लगकर नापाक हो चुका हो। फिर दूसरा अमल है 3 बार नाक झाड़ना। जैसे आप कहते हैं ना कि नाक को अच्छी तरह से झाड़ा ताकि अंदर कोई रतूबत है, कोई गंदगी है तो वो भी निकल जाए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नींद से बेदार होकर वुजू करने लगो तो नाक में पानी चढ़ाकर 3 बार इसे झाड़ो, क्योंकि शैतान नाक के बांसे में रात गुजारता है, यानी कैविटी ऑफ नेजल, जिसको नेजल कैविटी कहते हैं, उधर रात को शैतान सोता है। ये बुखारी की रिवायत है 3295 और मुस्लिम 238। अब आज आपके ये कैसे, क्यों? तो आप देखिए सुबह आप उठेंगे ना, सबसे ज्यादा इधर रतूबत होती है, और अल्लाह ने ये ऐसी खूबसूरत बात बताई है, आजमा के देख लें। सुबह उठकर वुजू के लिए तो बात की बात है, अल्लाह के नबी तो अपने बिस्तर पे जब उठते थे तो पहले नाक झाड़ते थे 3 दफा से, बिल्कुल आवाज के साथ उसको अच्छी तरह से झाड़िए। ऑफ कोर्स आजकल नैपकिन है, टिश्यूज हैं, बहुत ही आसानी से हम झाड़ सकते हैं, इसी तरह थोड़ा सा पानी डाल के उसको साफ करके फिर हाथों को धो लीजिए, फिर वुजू शुरू करें, तो इस अमल से इंशाल्लाह शैतान जिस्म से निकलता है। सोने वाले की नाक के वास्ते में शैतान की रात गुजारने की कैफियत और हकीकत क्या है, कोई सवाल कर सकता है? अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हमारा फ़र्ज़ ईमान लाना है, और वाकई शैतान वहाँ रात गुजारता है। देखिए कई रिवायतें, एक में के शैतान रात को बालों में 3 गिरहें लगाता है, गुद्दी पे बैठता है। तो अब मैं आप नहीं देख रहे, तो इसका ये तो नहीं मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसको मान लीजिए कि ऐसा ही होता है। वैसे भी आप देखिए कि नाक एक्सपोज होते हैं, हम सोते हैं ना, सांस ले रहे हैं, इर्द गिर्द जितने जरासीम है एटमोसफेयर में बहुत अलाइशें होंगी, तो वो आपके नाक के बालों में अटक जाती हैं। यानी अगर इसको स्पिरिचुअली और फिजिकली आप मिलाकर देखें तो आपको ये बात समझ आएगी। तो आइए देखते हैं कि मसनून वुजू कैसे है तर्तीब के साथ। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना नहीं, बल्कि लफ्ज़ बिस्मिल्लाह, जो मसनून तरीका है वो क्या है, बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नबी यही कहा करते थे, बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। ठीक है, अब सबके रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, निसाई की रिवायत 78। ठीक है, उसके बाद दूसरा अमल क्या होना चाहिए, वुजू की इब्तिदा के वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना है। ये सुन्नत से शदीद मोहब्बत की अलामत है, जितना रसूलुल्लाह ने बताया उतना ही पढ़ें। क्योंकि कोई सवाल करेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में क्या रज है जी, जब हम हर चीज़ में पूरी पढ़ते हैं, और अब तो हम वुजू कर रहे हैं, सुन्नत से मोहब्बत है। सहाबा किराम ऐसे ही दीवाने थे, अल्लाह के नबी के बटन खुले होते तो इनके भी खुल जाते थे। तो बहरहाल लफ्ज़ बिस्मिल्लाह, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू के शुरू में अल्लाह का नाम नहीं लेता, इसका वुजू नहीं होता। अब ये भी देखिए, ये एक ऐसी सुन्नत है जिसको जरूर पूरा करना है, और ये अबू दाऊद की रिवायत 101 है, और अल तरगीब की रिवायत 164 भी है। तो बिस्मिल्लाह लाजमी है, बाथरूम में जाना है, वजू करना है अगर अंदर, तो अंदर जाने से पहले बाहर ही बिस्मिल्लाह कह लीजिए। थोड़ी सी वजाहत भी इस पे ले लीजिए कि अगर बिस्मिल्लाह भूल गई और वजू के दौरान में याद आई तो फौरन पढ़ लीजिए, दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भूल चूक माफ है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ठीक है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहनते, कंघी करने और पाकी हासिल करने और दीगर तमाम कामों में दाईं तरफ से शुरू करना पसंद करते थे, यानी हर काम को राइट साइड से शुरू करते थे। तो हमें वुजू के अज़ा को धोते हुए भी पहले सीधी साइड फिर उल्टी साइड के अज़ा को धोना है। ये बुखारी की रिवायत है 168। फिर इसी तरह से अपने दोनों हाथ पोंछों तक 3 बार धोएं, रिस्ट तक, यानी एक गुट सा बना होता है हाथ का, चूड़ी भी अक्सर वहीं पहनी जाती है और घड़ी भी, तो यहाँ तक 3 बार धोइए। ये सही बुखारी के अल्फाज है 159 और मुस्लिम 226 है। फिर इसके बाद हाथों को धोते वक्त हाथों की उंगलियों के दरमियान हिलाल कीजिए, यानी इस तरीके से कि दोनों उंगलियां एक दूसरे में जाकर पेवस्त हों और अंदर की जो खुश जगह है वो हट जाए। ये अबू दाऊद की रिवायत है 142, और तिरमिजी में 38 भी है, मुस्तदरिक अल हाकिम में 147 और 148 भी है, और भी इसके दलाइल मौजूद हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एक चुल्लू पानी लेकर आधे से कुल्ली करें और आधा नाक में डालें, और नाक को बाएं हाथ से झाड़ें, लेफ्ट हैंड से नाक झाड़िए, और ये अमल 3 दफ़ा करना है। ये सारा मसनून तरीका है, बुखारी की रिवायत है ये 191 और 199 और मुस्लिम 235 नंबर है। इसके बाद 3 बार चेहरा धोएं, ये तो आखिरी बात हुआ है कि बुखारी की 185 और मुस्लिम 235, यानी 3 दफ़ा चेहरा धोइए। फिर एक चुल्लू पानी लेकर इसे ठोड़ी के नीचे दाखिल करके दाढ़ी का खिलाल करें, यानी मर्द हजरात जब मुंह धो लेते हैं तो अपनी उंगलियों को दाढ़ी के बालों में डालें और अच्छी तरह से अंदर पानी पहुंचाए, क्योंकि कभी कभी दाढ़ी के ऊपर पानी लगता है लेकिन अंदर नहीं जाता, तो उंगलियों से पहुंचाने की कोशिश करें। ये तिरमिजी की रिवायत नंबर 31 भी है और इब्ने हबान में 154 भी है। अब आगे जरा सा गौर कीजिए, एक बड़ी अहम चीज आने लगी है, तो वो आपकी तवज्जो चाहती है। फिर दायां हाथ कोहनी समेत 3 बार धोएं, फिर बायां हाथ भी कोहनी समेत 3 बार धोएं। ये तरीका सही बुखारी की रिवायत 1934 में है और मुस्लिम में 236, यानी 3 3 बार कोहनियों तक। देखिए अगर कोहनी खुश्क रह गई तो वजू नहीं होगा, सर्दी की वजह से, टाइट शर्ट पहनने की वजह से, या फिर किसी और वजह से अल्लाह के नबी ने वईद सुनाई कि खुश्क कोनियों वालों के लिए अजाब है। तो बाज़ लोग वज़ू करके निकलते हैं तो चेक किया करें, और ख़ास तौर पे ग्रोइंग बच्चों की, कि उनकी कोनियाँ खुश्क तो नहीं रह गई। अब है सर का मसा, ज़रा से इसको सुनिए। हमारे इंडो पाक कल्चर में इसमें कुछ मुगालते हैं, मैं ये नहीं कहती गलत है, लेकिन कुछ मुगालते हैं। वो क्या हैं? पहले एक मसनून अमल देख लेते हैं। सर का मसा करेंगे, दोनों हाथ सर के अगले हिस्से से शुरू करके गुद्दी तक ले जाएं। गुद्दी क्या होती है? जहाँ चुटिया की जाती है वहां तक पीछे ले जाएं, फिर पीछे से आगे इसी जगह ले आएं जहां से मसा शुरू किया था। मुश्किल लगेगा आपको क्योंकि बाल खराब होते हैं, चुटिया खराब होती है, और ये रिवायत बुखारी की 185 और मुस्लिम 235 है। आप कहेंगे ये कैसे करें, ये तो बड़ा मुश्किल। तो अल्लाह को आप पे प्यार आएगा कि आपने अपने बाल थोड़े से खराब कर लिए, और हल्के हल्के हाथ से करें, और बाद में दोबारा बालों को पीछे कर लीजिएगा। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह ने सर का मसा एक दफा किया, यानी बाकी अमाल तीन तीन दफा के हैं लेकिन मसा एक दफा। ये बुखारी की रिवायत 186 और मुस्लिम 235 है। मसे का तरीका हमारे कल्चर में क्या, अमूमन हाथ ऊपर फेर देते हैं, नहीं लेके जाएं फिर वापस लाएं। अब जरा सुनिए कानों का मसा, ये भी दुरुस्त नहीं है हम लोगों का अमूमन। वो क्या है? कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराखों में दाखिल करें। अगर सुनते वक्त आप करके देखें तो समझ आएगी, शहादत की उंगलियां यानी जो अंगूठे के साथ दोनों उंगलियां कानों में डालिए सुराख के अंदर, और अंगूठा रखिए कान के पीछे। ये उंगलियां घुमाकर ऐसे निकालिए कि पीछे से पुश्त की तरफ से अंगूठा ऊपर आए, यानी शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराखों में दाखिल कीजिए। अंदर की जानिब से गुजार कर कानों की पुश्त पर अंगूठों के साथ मसा करें। ये भी मुश्किल लगता है, एक आध दफा करेंगे तो आसान हो जाएगा। और ये मसाह का तरीका मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ? सही इब्ने माजा 439, और इसी तरह से और भी हैं। देखिए इस बुक को चूज़ करने का मकसद ये था कि ये सही प्रूवन अहादीस की रोशनी में, इसमें किसी मसलक की छान नहीं, किसी की फिक नहीं है, हम जो भी सीख रहे हैं इस वक्त अहादीस की रोशनी में और कुरान पाक की आयात की रोशनी में। फिर इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? दायां पांव टखनों समेत 3 बार धोएं और बायां पांव भी टखनों समेत 3 बार धोएं। टखने क्या होते हैं? एंकल्स, यानी जो छोटा सा हिस्सा पांव के ऊपर उभरा होता है वहां तक धोना होता है। ये मसला बुखारी में 1934 और मुस्लिम 226 है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? जब भी वजू करें तो हाथों और पांव की उंगलियों का खिलाल करेंगे, यानी मेक श्योर कि अंदर तक पानी चला जाए। ये तिरमिजी की रिवायत है 39 और इसी तरह इब्ने माजा में 446। अब आप देखिए कि इतना इख्तमाम क्यों? सुन्नत से मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने का शौक है। साहबी कहते हैं, जिनका नाम है मिस्तौरत बिन शद्दाद रजी अल्लाह अन्हु, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करते हुए देखा, क्या आप अपने पाँव की उंगलियों का खिलाल हाथ की छिंगली, ये जो जिसको आप चीची उंगली कहते हैं ना, छोटी सी उंगली, इससे कर रहे थे, यानी ऐसे उंगलियों के बिटवीन अपनी छोटी सी उंगली डालकर मेक श्योर कर रहे थे कि अंदर पानी गया कि नहीं। ये अबू दाऊद की रिवायत है 148। फिर इसी तरह से आप ये भी चीज़ देखिएगा जो बहुत नापैद है, यानी मैंने तो खुद जब हदीस पढ़ी तो मुझे ये मसला समझ आया और आज तक इस पे अमल है माशाल्लाह। क्या? वुजू हो गया, वुजू के बाद ऐसे ही पानी लीजिए हाथ में और कपड़ों समेत ऑफ कोर्स अपने प्राइवेट पार्ट पर ऐसे छींटा मार दीजिए, ठीक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू के बाद अपने सतर यानी शर्मगाह पर छींटा मारते थे, और इसकी फजीलत क्या है? नमाज में वसवसे नहीं आते। जिसको भी मैंने बताया उसको पहले नहीं पता था, और मैं ऐसे नहीं बताती, किताब से ही जब पढ़ाते हैं तो फिर ही बताती हैं। आप कहेंगे ये कहाँ लिखा है? तो निसाई में लिखा है 135 और इब्ने माजा 464 है। तो इससे क्या पता चला कि ये छोटी छोटी सुन्नतें इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा वुजू भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू की तरह होगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक भी दे, अपने बच्चों को अपने घर वालों को इस चीज का शौक दिलाइए कि सीख कर कोई काम करना और बगैर सीखे कोई काम करना ये बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रुक जाते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व तूबु इलैक रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तूब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।